कंस किसी भी तरह से कम नहीं था रावण से, ये आप जान लीजिए, बहुत बलवान था। इसका वर्णन शास्त्रों में बहुत विस्तार में किया गया है कि भगवान ने कोई साधारण काम नहीं किया था, कंस को मारना कोई साधारण काम नहीं था, क्योंकि उसने बहुत उत्पाद मचा रखा था। तभी तो सारे देवताओं के आग्रह पर भगवान प्रकट हुए इस द्वापर युग में। कंस के पिताजी का नाम क्या था? अग्रसेन जी महाराज। और कंस के माता का क्या नाम था? उग्रसेन महाराज की पत्नी का क्या नाम था? पद्मावती। क्या नाम था? जानना चाहिए। तो उग्रसेन जी महाराज और पद्मावती से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम पड़ा कंस। एक कंस बहुत बलवान था और बचपन से ही उसने उपद्रव करना शुरू कर दिया था, और उसको सब ज्यादा मल युद्ध बहुत पसंद था। मल समझते हैं ना, इसने उसने क्या किया था, बहुत बड़ा अखाड़ा बनवा रखा था और कुश्ती लड़ता था गांव में भी। अब तो धीरे धीरे प्रचलन बंद हो गया, पहले अखाड़ा गांव में खुदता था और सब लोग पहलवानी करते थे, लड़ते थे, कुश्ती लड़ते थे। तो वो जो है मल्लयुद्ध का महारथी था, तो रंगभूमि उसे कहते, राजा रंगभूमि कहते, अखाड़ा खुआ कर लड़ा था। एक बार क्या हुआ, मगध नरेश जिसको जरासंध कहते हैं, जरासंध जब विष विजय करने के लिए निकला तो यमुना जी के पास आकर के अपना पड़ाव डाला था, और उस समय कंस अपने रंगभूमि में अखाड़े में मल्लयुद्ध कर रहा था। तो जरासंध के पास एक बहुत विशाल हाथी था, उसका क्या नाम था, कुलपीड नाम का एक हाथी था। वो पता नहीं उसको क्या हुआ, वो सांकर आकर सब तोड़ करके तहस नहस करते हुए, बहुत बलवान हाथी था, वो रंग भूमि में आ गया जहाँ पे वो युद्ध मल अपना अखाड़ा कुश्ती लड़ रहा था। और उस भयानक हाथी को देख करके सारे भाग गए, लेकिन कंस नहीं भागा। उसने हाथी को सूंड को पकड़ लिया और जमीन पे गिरा दिया। देखिए साधारण नहीं था, बहुत बलवान था, इसीलिए थोड़ा उसका करना चाहिए। हम लोग सस्ते में कि भगवान ने कंस को मारा, कंस क्या था ये जानना चाहिए। उस हाथी को मार दिया, मैंने गिरा दिया, मारा नहीं, जान से नहीं मारा, पड़क दिया। और फिर उसके बाद एक पैर को पकड़ के खूब चकरी की तरह से घुमाया, उठा लिया, और उठा करके वो जिधर से आया था उधर ही फेंक दिया। तो जरासंध जब इतना बल देखा कंस के बल से बड़ा प्रभावित हुआ। तो उसकी दो बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों की शादी किससे कर दी, कंस के साथ, ऐसा रिलेशन बना। और वाह उसके बल, अफसोस से कितना बलवान था। तो उससे मगधराज बहुत प्रसन्न हुए और दोनों बेटियों की शादी कर दी। अब दोनों क्या बन गए, रिश्तेदार बन गए, दोस्त। अब दोनों मिल करके है ना बड़ा उत्पात मचाना शुरू किया। उसने एक ऋषिमुख पर्वत, त्रेतायुग में इसका नाम आता है, वहां पे एक द्विज नाम के बानर था, उससे 20 दिन लड़ाई हुई। कितने दिन? 20 दिन लड़ा कौन, कंस। अब बाद में द्विज को पराजित करके और उसको भी अपना क्या दोस्त बना लिया। फिर जब विजय पे निकला तो जितने बकासुर, अघासुर, पलम्बासुर, अरिष्टासुर, धेनुकास, ये बड़े बड़े बलवान राजा थे, इसने सबको पराजित किया। आप समझ, ये सब ऐसे दोस्त नहीं बने इसके, सबको पराजित। वो बोलता था या तो मेरे हाथ मारे जाओगे या तो मेरी दोस्ती कर लो। ते से सबको पराजित, पूतना वगैरह ये सब अघासुर की बहन थी, सबको पराजित, सबको अपना सेवक बना लिया था, सब उसके क्या बन गए थे मित्र। वो जैसा आदेश देता था सब फॉलो करते थे, जबकि इससे बड़े बड़े राजा थे, बड़ा प्रलंकारी सब थे, सबको पराजित कर दिया। एक कंस, अब वही कंस इतना भयानक बलवान था कि महेंद्र पर्वत का नाम सुना होगा, जहां कौन रहते हैं, परशुराम जी, महेंद्र पर्वत पर जा करके इतना बड़ा महेंद्र पर्वत उसने 100 बार उठाया। कितनी बार, अब आप सोचिए, 100 बार उठाता था महेंद्र पर्वत को, रखता था, फिर उठाता था, फिर रखता, 100 बार महेंद्र पर्वत। जब 100 बार इस तरह से किया तो किसको गुस्सा आ गया, परशुराम जी को। परशुराम जी बहुत गुस्सा है, परशुराम को गुस्सा तो आप जानते हैं, लक्ष्मण जी और परशुराम को बड़ा संवाद हुआ था, बड़े क्रोधित हुए, अपना फरसा उठा ले उसका मारने के लिए, वो चरणों पे गिर गया, कहा कि परशुराम जी मैं क्षत्रिय नहीं हूं। वो किसको मारते थे, वो क्षत्रियों को मारते थे, तो उसका प्राण बच गया। जब बोल दिया तो मैं क्षत्रिय नहीं, बलवान हूं लेकिन क्षत्रिय नहीं हूं, तो उसने अपना पूरा परिचय दिया। जब इस तरह से विनती की, प्रार्थना की और उनकी तारीफ की, गुणगान किया, तो वो सुरक्षित बच गया। परशुराम जी उसकी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए, और एक धनुष थी जिसका वजन 30 लाख मन था, मन मन समझते हैं ना, 100 किलो का एक मन होता है, इतना टन धन, बहुत वजन था। और इस धनुष दिया था परशुराम जी को भगवान विष्णु ने, शंकर जी को दिया था, शंकर जी ने परशुराम को दिया था, अब परशुराम जी ने वो धनुष संभाल करके अपने पास रखा था। वही धनुष किसको दिया, कंस को दिया, ये जान लीजिए। अब आप समझ से कल्पना करिए कितना बलवान था, कंस के अत्याचार से सब लोग परेशान हो गए, पूरी धरती त्राहिमाम हो गया था। तब ब्रह्मा जी सारे देवता लोग मिलकर के प्रार्थना किए, तो आप सबको कथा मालूम है कि भगवान किस तरह से किसको चुना, वसुदेव देवकी को। और इसके पहले, क्योंकि देखिए भगवान प्रकट हो गए, अब देखिए कंस जरासंध जब शादी की थी तो दहेज बहुत दिया था, दहेज की प्रथा शुरू चली आ रही। जब भगवान राम का विवाह हुआ था तब भी खूब महाराज जनक ने खूब दिया था, और जब कंस के साथ हुई तो बहुत दहेज दिया गया, 1 अरब घोड़े दिए गए थे, 3 लाख हाथी दिए थे, और 10,000 दासियां, क्योंकि पहले एक नियम था कि जब शादी होती थी तो दासियां भी जाती थी साथ में, तो बहुत बड़ा। तो जब शादी तय हुई किसकी, क्योंकि इतना दुष्ट था कंस कि अब जरासंध के बहकावे में ही आकर के अपने पिता को क्या किया था, जेल में डालकर सुगोति स्वयं राजा बन गया था। ये किसने बहकाया था, उसका संधि मिल करके कहे कि देखो अब तुम्हारा जमाना है, क्या समझा, कंस बोला कि अब तुम्हारा जमाना है, तुम पराक्रमी हो, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारे पिता भी बूढ़े हो गए, हम भी बूढ़े गए, अब तुम्हारा जमाना है, ये संकेत तो समझ गया, तभी हो गया वहां पे गया। अब उस समय गया जब अक्रूर जी अपने राज पुरोहित से तारीख तय कर रहे थे, शुभ लग्न तय कर रहे थे शादी के लिए, किसकी शादी, वसुदेव और देवकी की, मुहूर्त तय कर रहे थे, उसी समय जो है वहां पहुंचा और उन्होंने कारागार में डाल दिया कि है ना, कहे कि राज मुकुट या तो आप उतार के मुझे पहना दो, नहीं तो मैं उतार के पहन लूंगा। अक्रूर जैसे बोलता है कि राज मुकुट या तो आप उतार के मैं पहना दो या तो मैं उतार लूंगा। इतना दुष्ट था, अपने पिता से ऐसी बात कर रहा। अक्रूर जी महाराज बहुत विनम्र स्वभाव के थे, कहे नहीं मैं खुद उतार देता हूँ। इस तरह से उनको काल कोठरी में डाल दिया, जेल के अंदर डाल दिया था। और जब शादी हुई बसदेव देवकी की, बहुत उस पर उसने लगन तय कराई। वास्तव में बसदेव जी से कंस से बहुत पढ़ती थी, दोस्ती थी। कंस ने ही ये बात बोली थी कि मेरी जो बेटी और मेरी जो बहन है देवकी है ना, उसकी शादी हम आपसे करना चाहते हैं, आप मेरे मित्र भी हो, अगर शादी हो जाएगी तो डबल वो लगाव हो जाएगा, तो आप मेरे जो है नाते रिश्तेदार भी हो जाएंगे। तो बसदेव जी तैयार हो गए थे सर। तो बसदेव जी ने कहा लेकिन रोहिणी का क्या होगा कि उनकी शादी पहले हो चुकी थी। किसके साथ? रोहिणी के साथ। हम तो पहले के राजा महाराजा में शादियां बहुत होती थी, तीन तीन दस दस हजार हजार रानियां रखते थे, है ना। तो रोहिणी भी थी, तो शादी हो गई। जब रथ हांकने की बात आई तो कंस ने सारथी को मना कर दिया कि तुम नहीं चलोगे, मेरी बहन का रथ मैं खुद लेके हाथ से चलूंगा। और तब जो ये कितना दृश्य है, देखिए कितना संगीतमय वातावरण था, विदाई का माहौल था, संगीत बज रहा था। और उसी समय जो है रथ का जब लगाम पकड़ा, रथ स्टार्ट हुआ, बसदेव देव की रथ पे बैठे थे खुशी खुशी, है नहीं। और उसी समय आकाशवाणी हो गई। वो आकाशवाणी से बड़ा धक्का लगा किसको? कंस को। उसने तुरंत तलवार निकाल रथ पे और कहे कि देवकी को ही मार देता हूँ। वहां पे बसदेव जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, उन्होंने ऐसी नीति अपनाई, क्योंकि ये शिक्षा लेना चाहिए कि तत्काल अगर मौत है तो बचने के लिए सारे उपाय करने चाहिए। तो बसदेव जी ने वही नीति अपनाई कि इस समय हमारा पहला काम है किसी तरह से देवकी को बचाना, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, राइट। तो बहुत ढंग से समझाया, अंत में कह दिया कि जो संतान होगी हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें जो करना है करो। इस बात पे कंस राजी हो गया था। तो हम इस श्लोक पे आते हैं। इस तरह से ये पूरा वातावरण करके जब जेल में डाल दिया अपने, उसने जेल बनवाई थी मथुरा के जेल में, जहाँ जिस कोठरी में अक्रूर जी थे उसके साथ ही कोठरी में उसको भी डाल दिया था। तो दोनों अक्रूर जी और बसदेव देव की साथ ही साथ उनके कमरे थे, साथ ही साथ इस तरह से जेल में डाल दिया और अपना जो है इंतजार करता है। तो आप सबको मालूम है किस तरह से भगवान, जब भगवान के करीब छह भाई मारे गए, कितने भाई मारे गए? ये सब बड़े भाई थे, भगवान से पहले छह संतान उत्पन्न हुए और कंस ने छों को क्या किया? मार डाला। सातवां जब नंबर आया तो आप सबको पता है कि बलराम जी जब देवकी जी गर्भ में आए तो योग माया से कह करके भगवान ने क्या किया? संकर्षण कर दिया, ट्रांसफर करा दिया रोहिणी के गर्भ में। और जब रोहिणी का गर्भ में पहुंच गए बलराम जी, तब भगवान जो है देवकी के गर्भ में प्रवेश किए और जब प्रकट हो गए तो चतुर्भुज रूप में। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म क्या होता है? दिव्य होता है। तो इस कलयुग में जितने भी नकली गुरु हैं जो एक कहते हैं कि मैं भगवान हूं या भगवान का अंश हूं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान वो होता है जिसका जन्म क्या होता है? दिव्य होता है। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब ट्रांसजेंडर हैं। नरसिंह भगवान का अवतार खंभे से प्रकट हुआ, तो जो तथाकथित अपने आप को भगवान कहते हैं वो खंभे से प्रकट होकर के दिखाए अपने आप को, नहीं कर सकते। भगवान राम ही प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, बिल्कुल सिंगार के साथ। यहां भी जब प्रकट होते हैं बसदेव देवकी के सामने तो चतुर्भुज रूप में सिंगार के। इंसान कभी ऐसा जन्म लेता है? नहीं, नहीं लेता। इसलिए इंसान को अपने आप को भगवान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म दिव्य नहीं है। भगवान पूरे सिंगार का शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। इसकी फोटो बड़ी सुंदर प्रभुपाद जी ने छपवाई है, ये तस्वीर है। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। अब भगवान को देख करके बसदेव देवकी बड़े प्रसन्न हुए। बसदेव जी ने बड़ी सुंदर इस श्लोक के पहले बहुत सुंदर प्रार्थना की। अब भगवान ने बताया है ना, क्योंकि जब देवकी ने प्रार्थना की, जब बसदेव जी प्रार्थना कर लिए तब देवकी ने प्रार्थना की। और देवकी ये कर रहे थे कि भगवान आप अपने इस चतुर रूप को क्या करिए, छिपा लीजिए, राइट। और आप अपने ओरिजिनल वास्तव में कृष्ण का जो नेचुरल फॉर्म है वो क्या है, द्विभुज वाला। कृष्ण हमेशा द्विभुज में ही रहते हैं, वो गोलोक में रहते हैं तो द्विभुज में ही रहते हैं, क्योंकि कृष्ण ने ही अपना विस्तार किया था विष्णु के रूप में, है ना। उनको कितना हाथ दे दिया, चार हाथ दे दिया। कृष्ण के ही प्रथम विस्तार कौन है, विष्णु भगवान, भगवान विष्णु। तो प्रथम विस्तार जब विष्णु का उन्होंने किया तो चार हाथ दे दिया, तो शंख चक्र गदा पद्म उनको पकड़ा दिया, खुद बांसुरी हो जाते। कृष्ण की क्या लीला है, खाली हाँ, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उंगली ऐसे कर देते हैं, सुदर्शन चक्र आ जाता है उनके पास, क्यों है ही उनका, वो तो पकड़ा रखा है विष्णु जी को, जब जरूरत पड़ेगी आ जाएगा। तो इस तरह से जो है, तो वही देवकी माता जी ने प्रार्थना की कि आप इस रूप को क्या करें, छुपा लीजिए और आप नेचुरल एक बालक के रूप में बन जाए। तो इसलिए इस तस्वीर में भगवान ने सारा कथा सुना करके, सारा निर्देश दे करके एक बालक के रूप में क्या है, बन गए। और तब भी सिंगार किए हैं, एकदम नंगे नहीं है उन्होंने अपना, फिर देखो मुकुट वो लगा हुआ है, पंख भी लगा हुआ है। भगवान इस तरह से जब बन गए, तब जब छोटे रूप में बन गए, तब वहां पे माया भगवान का चमत्कार देखिए कि जितनी उनके हाथ हथकड़ी बेड़ी लगी हुई थी वे सब अपने आप क्या हो गए, टूट गए, खुल गए। उसके बाद जो दरवाजा था, कई दरवाजे थे, वो सब के सब ताले अपने आप खुल के और दरवाजा खुल गया। जितने पहरेदार थे ये सब के सब क्या हो गए, सो गए। आप देखिए भगवान दिशा निर्देश दे करके कैसा होगा, मुझे गोकुल ले जाना है, ये सब बता करके तब भगवान नन्हे बालक के रूप में बने। और जैसा भगवान ने डायरेक्शन दिया था उसी तरह से बसदेव जी जो है एक सूपा में रख करके और चलने लगते, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। वास्तव में बताया गया है दशम स्कंद की स्टार्टिंग इतना बढ़िया बताया गया है, और गर्भ संहिता में गर्गमुनि ने बड़ा सुंदर विस्तार किया कि जब भगवान प्रकट हुए तो पूरा प्रकृत प्रसन्न थी। प्रकृत समझते ना, प्रकृत ये जो कुछ है प्रकृत है, प्रकृत प्रसन्न हो गई है ना। पूरे धरती की जो पूरा धरती माता जो है, क्यों धरती माता भी गाय का रूप धारण करके गई थी कंस के अत्याचार में, तो धरती माता भी प्रसन्न हो गई। तो उस परम प्रसन्नता में क्या हुआ कि सब हरा भरा जितने सूखे वृक्ष थे सब हरे भरे फल फूलों से लद गए, और जितने नक्षत्र थे सही पोजीशन में आ गए, रोहिणी नक्षत्र भी था, पवस खूब बारिश हो रही, बिजली चमक रही थी, है ना। और ऐसे वातावरण में भगवान को लेकर के बलदेव जी जब निकलते हैं तो बारिश से बचाने के लिए स्वयं बलराम जी जो है, जो शेषनाग जी के अवतार हैं, शेषनाग जी अपना फन ऐसे करके छाता के रूप पीछे पीछे चल रहे थे। जब जमुना जी तो यही बताया कि इंद्र द्वारा बरसाई गई, निरंतर वर्षा करना, यमुना नदी में पानी चढ़ रहा था और उसे भयानक भरों के साथ फेन उठ रहा था, कि जिस तरह पूर्व काल में हिंद महासागर ने रामचंद्र का सेतु बनाने के अनुपति देकर रास्ता प्रदान किया था, उसी तरह यमुना नदी ने बसदेव को रास्ता देकर उन्हें नदी पार करने दी। कितना सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी कथा सुना रहे हैं, उसमें इन्होंने राम सेतु के बारे में बताया। आप जानते हैं जब भगवान पूरी बाणी सेना को लेकर के समुद्र के तट पे पहुंचे तो 100 योजन चौड़ा था, उसकी चौड़ाई कितनी थी, 100 योजन, बहुत लंबाई चौड़ा था, और उसको पार करना आसान नहीं था इतने बाणों के साथ। हनुमान जी तो उड़ करके पार कर गए थे, लेकिन अब इतने बाणों को पार करना बहुत बहुत सम नहीं छलांग लगा सकते थे। तो उसको पार करने के लिए भगवान ने कितने दिन विनती की समुद्र से, 3 दिन प्रार्थना, 3 ही दिन क्यों प्रार्थना की, इसलिए कि स्वयं भगवान राम, विभीषण और सुग्रीव ये तीनों की ये राय थी कि 3 दिन तक प्रार्थना करके रास्ता मांगे किसे, समुद्र से, इसलिए 3 दिन। लेकिन लक्ष्मण जी इसके पक्ष में नहीं थे, वो पहले ही दिन उन्होंने बोल दिया था कि ये 3 दिन व्यर्थ गंवाने से अच्छा है कि धनुष बाण उठाए और अग्निबाण से सोख करके पार हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने मना कर दिया। भगवान कहने 3 दिन हम प्रार्थना करते, कि भगवान राम किस रूप में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम का, कृष्ण ही है, कृष्ण ही राम बनकर रहे, चतुर्व्यूह बसदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये जो भगवान के चतुर्व्यूह यही राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में लीला करने के धरती पर आए थे। तो भगवान ने कहा जब 3 दिन बीत गए और समुद्र प्रकट नहीं हुआ, तब भगवान ने क्या दिखाया, क्रोध। क्रोध का कैसे उपयोग, कितना कब करना चाहिए, एक किससे सीखना है, भगवान राम से। पूरा क्रोध नहीं किया, बस इतना कहा कि लक्ष्मण ये दुष्ट है, अदुष्ट विनम्रता की भाषा नहीं सुनते, तो दुष्ट को दुष्ट की भाषा समझानी पड़ेगी, ऐसे नहीं सुधरेगा। इसलिए अब तुम्हारा 3 दिन तो हम अपने लिए तीनों का, अब जो तुम्हारा विचार है पहला वाला विचार वही अब काम लागू होगा, धनुष बाण ले आओ। और लक्ष्मण जी चाहते यही थे कि भैया मैंने तो पहले ही बोला था, 3 दिन व्यर्थ गवा दिया। तब भगवान राम ने क्या किया, धनुष बाण चढ़ाया। अच्छा, समुद्र बहुत चालाक था, समुद्र जानबूझ के नहीं प्रकट हो रहा था, वो आ नहीं रहा था, वो यही चाहता था कि भगवान राम गुस्सा करें और धनुष पे बाण चढ़ाएं और छोड़ने से पहले मैं प्रकट हो जाऊंगा। यही हुआ, जब भगवान राम ने बाण चढ़ा दिया और खींच दिया कान तक ऐसे मारने के लिए, तभी समुद्र क्या हो गया, प्रकट हो गया। इसकी 2 बातें हैं कि भगवान ने बाण छोड़ा नहीं, क्योंकि भगवान के अंदर क्या है, कंट्रोल करने की क्षमता है, कब कहाँ कितना करना है उतना ही करना है। आजकल पेशेंस नहीं है लोगों में, थोड़ा सा गाली टच हो जाती दे दना दन मारपीट, गाली गलौज हो जाती है, होता है नहीं होता है। लेकिन भगवान राम को देखिए, इतना हमारा कुछ नहीं सर, इतना क्योंकि क्रोध का आभास उन्होंने दिया, इसे कहते क्रोधाभास। तो क्रोधाभास से अगर काम चल जाता है तो पूरा क्रोध करने की जरूरत नहीं करना। और आजकल क्या हो रहा है, बिना बात के, चाहे पति पत्नी हो, भाई भाई हो, छोटी छोटी बात तो मैं मारपीट झगड़ा हो जाता है, राइट, तलाक हो जाता है छोटी छोटी बात। आज जो जो अपने अपने लोग अपने अपने घरों में परेशान है, क्यों परेशान है, लड़ाई झगड़ा से परेशान, क्योंकि किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कोई गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे लगा। अभी अखबार में एक न्यूज आई थी कि एक आदमी किसी मार दिया, उसका कंधा दूसरे कंधे से टकरा गया, मर्डर कर दिया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये न्यूज आई थी। पेशेंस नहीं है, तो पेशेंस किसे सीखना है, भगवान राम से। क्रोधाभास, अगर बच्चे को अगर बच्चा गलती करता है तो माता पिता सिर्फ आंख दिखा दें और बच्चा डर जाता है। अगर आंख दिखाने से जो है काम बन जाए तो आंखें दिखा दो, डांटने से काम चलता है डांट लगा दो, लेकिन यहां तो न कोई आंख दिखाता है न डांट, मार पीट शुरू हो जाती है, पेशेंस नहीं लोगों में। ये भगवान इतने वो प्रकट हो गया, क्यों प्रकट हुआ, वो जानता था, क्योंकि भगवान राम का एक गुण वो अच्छी तरह जानता था कि भगवान राम एक ऐसे महान और आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम है कि एक बार जब आप बाण खींच देते हैं छोड़ते जरूर हैं। तो उसके कुछ दुश्मन थे, समुद्र के कुछ दुश्मन थे, है ना, जो उत्तर दिशा की ओर रहते थे, तो उनको मरवाना चाहता था द्रुमकुल्य, तो उसको बोलते जगह का लाभ। तो प्रकट हो गया, प्रकट को बोला कि हम रास्ता दे देंगे, जिसके प्रभुपाद यहाँ कर रहे हैं कि रास्ता हम दे देंगे, और आपके जो नल नील इंजीनियर हैं विश्वकर्मा के पुत्र, एक सेतु बनाना उनको अच्छी तरह आता है, तो हम नीचे सपोर्ट कर देंगे, अब मिल करके जो है एक समुद्र बन जाएगा, सब पार हो जाएंगे। भगवान के बड़े प्रसन्न, क्या तो अच्छा है, लेकिन समुद्र अब बताओ कि मैं बाढ़ कहाँ छोड़ू, वो जानता था कि भगवान बाढ़ छोड़ेंगे जरूर। तो कहे कि अब इसका निशाना उत्तर दिशा की ओर कर दी, मेरी तरफ नहीं छोड़ना। बोला कि हे राम, हे प्रभु, अब आप इसका डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, कहा उत्तर दिशा की ओर, है ना, जो द्रुमकुल दुष्ट लोग हैं हमें परेशान करते हैं उनका नाश कर दीजिए। तब भगवान क्या किया, वो बाढ़ उधर मारा, इसीलिए समुद्र नहीं निकल रहा था, वो प्रकट नहीं हो रहा था, चाहता तो प्रकट जा रहा, वो चाहता था कि भगवान गुस्सा करे, धनुष पे बाढ़ चढ़ाए। अब इस ये बात समुद्र को कैसे पता चली थी, वो जानता था, क्योंकि जब धनुष हुआ था, सीता जी का विवाह हुआ था, है ना, तो परशुराम ने क्या किया, अपना धनुष दिया, बाढ़ दिया, कही आप इसको खींच के चढ़ाइए बाढ़। अब भगवान ने जो है चढ़ा दिया, तो कहे अब चढ़ा तो दिया, बता छोड़ू कहाँ, किससे मैं क्या करूँ। तो एक चीज उसको पता था कि भगवान की खासियत है कि अगर तीर चढ़ा दिया तो वो छोड़ना पक्का है, अब कहाँ छोड़ना है कल। इसलिए तो वही प्रभुपाद जी यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस तरह से भगवान रामचंद्र को सेतु बनाने के नाम देकर राजा प्रधान के, उसी तरह से जब यमुना नदी क्रॉस करें तो यमुना जी ऊपर आने लगी, उफान आने लगा, क्योंकि हनुमान यमुना जी भी भगवान का चरण स्पर्श करना चाहती थी, वास्तव में उफान आ रहा था। अब भगवान ये बात जान गए, इसीलिए जब वसुदेव जी लेके जा रहे थे तो भगवान ने क्या किया, अपना चरण नीचे लटका दिया, क्योंकि पानी उनके नाक से ऊपर आने लगा था। तो भगवान सब जानते थे कि पिताजी हमारे परेशान हो जाएंगे, तो चरण लटका दिया इससे, और जैसे स्पर्श किया यमुना जी अपने आप नीचे गई और रास्ता निकल गया। तो वही बताया सुखदेव, यमुना ने बसदेव को रास्ता देकर उन नदी पार करने दी। बसदेव जी को पता ही नहीं चला नदी पार करके आसस, ये किसकी लीला है, लीला पुरुषोत्तम की ये लीला है। इसीलिए भगवान को नाम क्या है, लीला पुरुषोत्तम, जो जन्म से ही लीला शुरू कर दे, जन्म कर्म चमे दिव्य में ऐसे भगवान नहीं बोला कि जो जन्म से लीला आरंभ कर दिया, प्रकट होने से पहले ही उन्होंने चतुर्भुज रूप में प्रकट किया अपने आप को, उपदेश दिया, डायरेक्शन दिया, फिर सारे पहरेदारों को शुलवा दिया, हथकड़ी बड़ी कड़वा दे, दरवाजे तब खुल गए। ये क्या है? लीला है। ऐसी लीला भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता, इसलिए किसी को भी अपने आप को भगवान घोषित नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल तो फैशन हो गया कि मैं भगवान, ए फर्जी भगवान जेल में है, और जज जजों के सामने गिड़गिड़ा रहे कि मुझे जमानत दे दो, तुम भगवान हो निकल के आ जाओ, कि तुम नकली भगवान हो, इसलिए ऐसा है। परेशानी इस बात की, कई लोग ऐसे हैं, आपको पता हो, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जेल में है जबकि अपने आप को कृष्ण ही मानते थे, कृष्ण का अवतार मानते थे, है ना, और मुकुट लग लेते, पंख मोरपंख भी लगा लेते थे, लड़कियों के साथ डांस करते थे, रास जाते थे, है ना, अब जेल में सड़ रहे हैं। तो भगवान हो तो निकल के आ जाओ, क्यों जेल में सड़ रहे हो, तोड़ो दरवाजा अपने आप आ जाओ, नहीं तुम फर्जी हो। ये लोगों की सही जगह यही है, ऐसे लोग तो कहने का मतलब वही यहाँ प्रभुपाद बता रहे कि किस तरह। अब जब अब देखिए ये तो रास्ते, अब जमुना पार गए तो गोकुल जब पहुंचे नंद महाराज के घर, जो आज का श्लोक है, तो सारे ग्वाले वहां भी सब सो रहे थे। वास्तव में कृष्ण शक्तिमान है, और शक्ति कौन है? उनकी योग माया। तो योग माया और कृष्ण और योग माया दोनों मिलकर के अपनी माया जाल दिखा रहे थे, यहां भी सुला दिया और वहां भी सुला दिया, बीच में क्या हो रहा है? कृष्ण को योग माया को छोड़कर किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि सब सो रहे थे। वहां पे गए, यशोदा मैया सो रही थी, यशोदा मैया को नहीं पता था कि पुत्र पैदा हुआ है, पुत्री पैदा है, उनको खुद एहसास नहीं बोले दिया, जबकि योग माया ही पुत्री के रूप में राइट टाइम उसी समय वो प्रकट हुई थी जिस समय भगवान प्रकट हुए थे यहाँ। तो दोनों मिलकर ऐसा प्लानिंग किया था कि यहाँ भगवान प्रकट है, वहाँ गए। और जब कृष्ण को लेके जाते हैं तो एक करोड़ जैसे यशोदा मैया सो रही थी, तो जो पुत्री थी वो जाग रही थी, वो नहीं सो रही थी, वो तो इंतजार कर रही थी योग माया ही, वो लेकिन यशोदा मैया सो रही थी, तो उनको वहाँ रख करके और पुत्री को ले लिया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वसुदेव जी को मालूम था कि ये पुत्री को हम ले जा रहे हैं अपने पुत्र को बचाने के लिए, दूसरे के पुत्री का है बेचारी मारी जाएगी। तो यहां पे बताया गया है कि ऐसा ही होता है, ये नेचुरल होता है। देखिए जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं और कहीं कोई मार खा रहा है, मार पीट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, तो इंसान केयर नहीं करता, जा रहा है, क्यों? जानता है हमारा नहीं है। अगर अपना होता है तो क्या करता है? तो बचाने देता है, सब दौड़ता है। तो एक निचरत के अपना ही प्रिय होता है, दूसरे का कोई प्रिय नहीं होता। तो एक कोई गलत नहीं है, तो अपने पुत्र को बचाने के लिए अगर दूसरे की पुत्री का बलि चढ़ाई जा रही है तो कोई गलत नहीं है। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं, ये किसकी वजह से है? योग माया की वजह से ऐसा चल रहा है। क्यों? क्योंकि यही लड़की जब जाती है वसुदेव जी लेकर के वापस, जिस रूट से गए थे उसी रूट से आए, अर्थात दोबारा भी जमुना क्रॉस किया और वहां पहुंचे। जब अंदर पहुंच गए तो जानते क्या, यही तो लीला है। जब कन्या के साथ पहुंच गए और देवकी जी को वो कन्या पकड़ा दी, कन्या को देख करके वो खिलाने लगे, और इतने में जितने उनका हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गई, और ताले अपने आप बंद हो गए, एज इट इज बंद हो गए। और जितने पहरेदार थे उठ के खड़े हो गए, सब जाग गए। लीला देखी, लीला पुरुषोत्तम की यही लीला है। और सब जाग गए और दौड़ करके किसको संदेश दिया? कंस को। कंस को जब ये पता चला कि कन्या पुत्री उत्पन्न हुई है तो कुछ मिनट के बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो जानता था कि हमारी तो मृत्यु तो पुत्र से होगी और पैदा कौन हुई? पुत्री। कि मेरा खतरा टल गया, बड़ा खुश हो गया था कि पुत्री का तो आकाशवाणी जो हुई थी वो पुत्र का हुआ था और पैदा हुई पुत्री, है ना। तो वो क्या सोच रहा था कि देखो भगवान भी हमसे डर गया, ऐसा सोच रहा था। लेकिन फिर भी कहीं है तो आठवां, इसलिए मारने के लिए वो आया। और देवकी से जबरदस्ती, देखो माँ की ममता कैसी होती है। माँ कोई भी नहीं चाहेगी कि जीते जी उसके संतान को कोई मारे, लेकिन कितनी दयनीय स्थिति थी उसमें, कुछ कर नहीं सकती थी। तो उस लड़की को भी जो है उसने जबरदस्ती छीना, और जैसे ही मारने का पटकने का प्रयास किया वो कन्या उसके हाथ से छूट गई, क्योंकि वो तो योग माया थी, दुर्गा जी थी, शक्ति थी भगवान की। वो आकाश मार्ग में चले गए। अब वहां से बोला कि रे दुष्ट कंस, तुम्हें मारने वाला पैदा भी हो चुका है और कहीं और जगह चला गया है। तब वो जो है डर गया। उसने डांटा कि तुम लोग कहे कि हम ऐसे कैसे कर सकते, तो हमारी हथकड़ी बनी बड़ी इतनी पहरेदार लगे, हम कैसे अदल बदल। कहे जरूर तुम लोगों ने हमारे पहरेदारों को प्रलोभन दे के सोना चांदी दे करके उनको मिला लिया होगा, चले गए होंगे। तो कहे इससे अक्रूर जी थे, अक्रूर जी भी समझाए कि दूसरा गेट उन्हीं का था। अब कंस जो है आया, डर गया। कंस बहुत डरा, डर गया। जब आकाशवाणी फिर हो गई, वो दुर्गा जी ने माने शक्ति ने बात बोली, वो डर गया। और फिर आपको पता है कि कंस ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि पहले पता करो कि कहाँ पे उत्सव मनाया जा रहा था। गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, जिसे क्या बोलते हैं, नंदोत्सव मनाया जा रहा था। तो उसको जासूसों ने बताया कि गोकुल में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। तो उसने तुरंत दिमाग लगाया कि जो भाग करके वो वहीं गया हुआ है, ये जो उत्सव मनाया जा रहा है इसीलिए। तो उसने कहा कि कैसे उस लड़के को मारा जाए। तो उसके मंत्रियों ने सलाह दिया कि उस दिन कई बच्चे पैदा होंगे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यही ओरिजिनल है। तो उसने क्या कहा कि उस दिन जितने बच्चे पैदा हुए हैं उस सारों को मार दिया जाए। तो मारने के लिए किसको बुलाया? पूतना को। ये वही पूतना थी अगासुर की बहन। इसको भी कंस ने पराजित किया था। बड़ी लड़ाकू थी वो, बड़ी खूंखार थी, सरेंडर कर दिया था। तो कहे कि एक काम पूतना ही कर सकती है। तो आप सबको कथा मालूम है कि किस तरह से पूतना कृष्ण को मारने के लिए मीठा जहर का लेप लगा करके गई अपने स्तन में और नंद कई 5-6 बच्चों को मार दिया था। सब जगह रोना पटना शुरू हो गया था। और अंत में किसका नंबर आया? यशोदा के घर का। वहां भी गई हो, कृष्ण को उठाया भी, घर से लेकर के बाहर जंगल में काफी दूर तक गई। उस दिन भगवान कितने दिन के थे? 6 दिन के थे, छठी के दिन, 6 दिन के थे, है ना। और बड़े प्रेम से दूध पिलाना शुरू कर दिया। अब भगवान दूध के साथ साथ उसका प्राण भी पी गए। अब पुतना को मार डाला, सिर्फ 6 दिन के थे। तो ये सारी लीलाएं भगवान इसीलिए करते हैं कि इन कथाओं को सुन करके हमारा क्या हो? उद्धार हो। अगर भगवान ने ये लीलाएं नहीं की होती तो हम लोग किसी किसकी कथा सुनते और सुनाते। इस धरती पर भगवान जितने भी अवतार लिए हैं, हर अवतार की अपनी कथा और लीला है। अनेक कथा और लीला को सुन करके भक्त अपना क्या कर लेता है, कल्याण कर लेता है। क्योंकि आत्मा का खुराक यही है, भगवान का दर्शन, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप करना और भगवान की कथा सुनना और सुनाना, ये सब किसका भोजन है, आत्मा का। तो इसीलिए ये भगवान की लीलाएं से हमको शिक्षा मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर द्वापर युग में आकर के बहुत बड़ा काम किया था। कंस को मारना आसान काम नहीं था, आप जान लीजिए। सारे लोग त्रस्त थे, कितना बलवान था उसकी तो हमें एक झलकी सुनाई, पूरा विस्तार में तो बहुत है। तो भगवान के लिए राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, भगवान जिसको मारना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता, अब भगवान जिसको बचाना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता। इसीलिए हम सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जप करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा कल्याण होगा, सुख शांति हमको मिलेगी, क्योंकि भगवान के नाम में ही सब सुख शांति समाये, सब आनंद का आगार कौन है, भगवान का नाम। चैतन्य महाप्रभु का एक अनुपम उपहार है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ बोले
प्रभु जी, आपने बताया कि परशुराम जी का जो धनुष था वो राम जी ने तोड़ा था, मतलब आपने नहीं बताया ये, राम ने परशुराम जी का जो धनुष था वो राम जी ने तोड़ा था, और परशुराम जी ने कंस को भी अपना एक धनुष दिया था।
उनके पास कई धनुष थी। बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप लोग सुन लीजिए। एक ही धनुष नहीं थी, ऐसे कई धनुष थी। एक शंकर जी की धनुष जो परशुराम जी के पास थे, उन्होंने किसको दिया था, महाराजा जनक की चली गई थी। परशुराम का ही धनुष, शंकर जी धनुष परशुराम ने किसको दिया था, महाराजा जनक को दिया था। एक धनुष किसको दिया, कंस को दिया। अब जानते हैं जब कंस, जब भगवान कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा जाते हैं, तब ये प्रसंग आएगा कि पहले किसको मारते हैं, जो हाथी थी वो दंडवत करती है, संडर कर देती है, जो मोष्टक चारों तरह। लेकिन कंस को मारने से पहले धनुष जो रखी, धनुष जहां रखी थी, भगवान कृष्ण बड़ा वहां जाते हैं और वो धनुष को तोड़ते हैं। क्योंकि जब परशुराम ने धनुष दिया था, बोला था कि ये धनुष को जो तोड़ देगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी, ये प्रसंग बाद में आएगा। तो जब भगवान कृष्ण मथुरा जाते हैं और वो धनुष को तोड़ देते, जब भयंकर आवाज होती है तब कंस डर जाता है। अच्छा, उसने धनुष को तोड़ दिया, उसको सूचना मिलती है, तब वो डर गया, क्योंकि अब हमारी मृत्यु निश्चित। कि परशुराम की याद, बात याद आ गई इसको, कि जो धनुष को तोड़ेगा वही। जानते हैं जब परशुराम से लक्ष्मण जी से बहस हो रही थी, तो लक्ष्मण जी ने एक बात कही थी कि बहुत धनुही तोरी लड़काएं। किससे बात किया, परशुराम जी से। परशुराम जी से लक्ष्मण जी बोलते हैं कि जब हम बच्चे थे, लड़के थे, तो हमने बहुत धनुष तोड़ी थी, तब तो आप नहीं गुस्सा किए थे। हाँ, ये बड़ी सुंदर कथा है, अगर आप सुनना चाहे तो एक टाइम एक मिनट लेता हो। बड़ी सुंदर कथा है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जब मैं बचपन में इतनी धनुष तोड़ दिया था तब आप गुस्सा नहीं किए, तो ये पुरानी धनुष तोड़ दिया तब न गुस्सा करने, ऐसा क्यों। परशुराम बहुत चक्कर है कि बात तो सही है। हुआ क्या था कि जब 21 बार क्षत्रियों का विनाश करके, राजाओं को मार मार के, चारों धनुष इकट्ठा कर लिए थे, क्योंकि सब क्षत्रिय थे, वीर थे, सबका धनुष भी छीन कर अपने धनुषों का ढेर लग गया था इनके आश्रम में, परशुराम जी के आश्रम में। तब पृथ्वी माता और शेषनाग जी, क्योंकि शेषनाग के अवतार कौन है, लक्ष्मण जी। तो जब धरती माता माँ का रूप धारण कर लिया, स्त्री का रूप धारण कर लिया, और उनके बेटे बन गए कौन, शेषनाग जी। तो माता और पुत्र दोनों मिल करके कहाँ पे आए, परशुराम जी के आश्रम में। तो धरती माता जो स्त्री का रूप धारण करे, क्योंकि मेरा बेटा बड़ा चंचल है ना, मैं चाहता हूँ कि आप इसका गुरु बन करके कुछ दिन तक अपने आश्रम में रखिए। तो मान गए, लेकिन एक शर्त है कि हमारा बेटा बड़ा चंचल है, अगर कोई गलती हो जाती तो आप उसको क्षमा कर दीजिएगा, दंड मत दीजिएगा। कह ठीक। तो जब परशुराम जी चले गए, कभी उस दिन में निकल जाते थे, तब इनको मौका मिला। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, बालक थे, जितनी धनुष थी इस सारा तोड़ डाला, सब तहस नहस कर दिया। इसलिए धरती माता इसलिए चिंतित थी कि अगर धनुष जितनी है अगर दुष्टों के राक्षसों के हाथ में पड़ जाएंगे तो संसार में बड़ा भयानक हो जाएगा, तो इसको कैसे विनाश किया जाए। तो इनकी प्लानिंग थी, धरती माता की और शेषनाग जी प्लानिंग। तो वही शेषनाग जी जो बालक रूप में सारे धनुष तोड़ दिया। अब परशुराम जी वापस आए, देखा सारे धनुष टूटी पड़ी हुई है, तो कही इस बालक ने तोड़ा, लेकिन गुस्सा नहीं कर सकते थे कि वचन दे दिया था, तो चुपचाप जो है सहन किए। और जब वो बालक जाने लगा तब उन्होंने अपना शेषनाग पूरा अवतार दिखते हैं, क्योंकि पर वहां बोलते हैं शेष जी कि हमारी आपकी मुलाकात फिर एक बार होगी। वही लक्ष्मण जी याद दिलाते हैं कि लक्ष्मण जी वही शेषा अवतार लक्ष्मण जी, वही लक्ष्मण जी कि बहुत अली तोरी लड़के जब मैं बच्चा था। जब ये बात उनको याद दिलाई तब परशुराम थोड़ा ठंडे हुए, तब वो समझ गए कि तभी इतना उछल कूद रहे तो स्वयं शेष जी है, आप समझ गए ना। तो ये वही प्रसंग है, तो बड़ी धनुष थी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भागवतम की